तो आइए ज़रा सा पारा शुरू करके चलते हैं इसकी तरफ, और आपको बड़ा खूबसूरत सा रब भी दिखेगा इसमें पिछले पारों के साथ। तो पारा 3 में जो दुआ है, ये भी हज़रत उस्माने गनी से हमें मिलती है, यानी बहुत कम रिवायात है इनसे जिसमें एक दुआ। और आप हैरान होंगे अभी, आज मेरा नहीं ख्याल कि कोई बादशाह मुसलमान सुबह शाम की दुआ में ये दुआ ना पढ़ता हो। और आज आपको ये सुनकर खुशी होगी कि ये उस्माने गनी का सदका जारी है। हदीस किधर है? हज़रत उस्माने गनी से रिवायत है, कहते हैं कि समेत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलु मा मिन अब्दिन यकूल, क्या यकूलु फिस सिबाहिन कुल्ली यौमिन व मसाइन कुल्ली लैलतिन, कोई भी मुसलमान जो सुबह को और शाम को ये कलेमात कहे, क्या कलेमात है? बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैयुन फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, 3 मरतबा। क्या तर्जुमा है इसका? मैं अल्लाह के नाम के ज़रिए से पनाह मांगता हूँ जिसके नाम की बरकत से ज़मीन और आसमान की कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती, वो सुनने वाला और जानने वाला है। ये जुमले जो 3 बार पढ़ लेता है उसको कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती। पढ़ते हैं आप? मेरा नहीं ख्याल कि आप में कोई एक भी ऐसी हो कि दुना पढ़ती हो। तो ये हज़रत उस्मान से दुआ में मिलती है, आज से इसको और बांध लीजिए। बाहर की दुनिया में बहुत सारे फितने हैं, अल्लाह ताला आपको मुझे बचा दे। आइए तिल का रसुल पारा नंबर 3 शुरू करते हैं। पिछले पारे की आखिरी आयत क्या थी? इन्नक लमिनल मुरसलीन, ए नबी आप तो रसूलों में से हैं, भेजे हुओं में से। और अल्लाह ताला ने क्या फरमा दिया था? तिल का आयातुल्लाह नतलूहा अलैक बिलहक व इन्नक लमिनल मुरसलीन तिल का रसुल फद्दलना बादहुम अला बाद। तो पारे का नाम भी है तिल का रसुल, सूरत बकरा की आयत 253 से सूरत के एंड तक, और फिर कुछ हिस्सा इसमें सूरत आल इमरान का भी पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। औसु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम तिल का रसुल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहु मन कल्लमल्लाहु व रफा बादहुम दरजातिन व आतैना ईसा इब्न मरियमल बैजिनात व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस वलौ शाअ अल्लाहु मक्ततलल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिन बादि मा जाअतहुमुल बैजिनात वलाकिन इख्तलफू फमिनहु मन आमना व मिनहु मन कफर वलौ शाअ अल्लाहु मक्ततलू वलाकिन अल्लाह यफ़अलु मा युरीद। एक ही आयत है, टॉपिक लिखिए राहे हिदायत। हिदायत की राह क्या है? आयत 253। ये रसूल हैं जिन में से हमने बास को बास पर फजीलत दी, इनमें से बास वो हैं जिनसे अल्लाह ताला ने बातचीत की और बास के दर्जे बुलंद किए। बातचीत किससे की? आदम से, मूसा से, नबी सल्लम से, और बास के दर्जे बुलंद किए। और हमने ईसा इब्ने मरियम को मौजजात अता फरमाए और रूहुल कुदस से इनकी तायीद की। अगर अल्लाह ताला चाहता तो इनके बाद वाले अपने पास दलीलें आ जाने के बाद हर किस आपस में लड़ाई भड़ाई ना करते, लेकिन इन लोगों ने इख्तलाफ किया और इनमें से बास तो मोमिन हुए और बास काफिर। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो ये आपस में ना लड़ते, जो अल्लाह ताला चाहता है वही करता है। ये की आयत है इस रुकू की, बाकी सब पिछले वाले में था। इसमें असल में अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी हकीकत से पर्दा उठा दिया, और वो क्या है कि हर दौर का पैगंबर एक ही मिशन के साथ आता है, और वो क्या है कि अल्लाह का पैगाम बंदों तक दिया जाए। बात वाले लोग अंबिया कराम में तकाबुल शुरू कर देते हैं। जो खूबी अल्लाह ने किसी नबी को दी होती है इसलिए ताकि लोग उस खूबी को देख कर उसको एक निशानी समझ कर अल्लाह के करीब हों, लोग उसी को झगड़े की बुनियाद बनाते हैं। कल तक जो बात अंबिया कराम के लोगों ने की, आज आयमे कराम को मानने वाले भी यही करते हैं। माजरत के साथ आज उम्मत मुस्लिमा 4 बड़े आयमे कराम के नाम पर अपने आप को पेश करती है। चारों आयमे कराम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, एक दूसरे के घरों में आते जाते थे, मेहमान बनते थे, रातें बसर करते थे, और हरम में ही मुख्तलिफ औकात में उन्होंने दीन की खिदमत की, और बस एक दूसरे के शागिर्द और उस्ताद भी थे। अब वो काम जो उन्होंने मोहब्बत से किया, बाद वाले लोग उसी को झगड़े का जरिया बना के आज उम्मत को तोड़ते हैं। यहाँ ही आज मैं आपको एक बात बता दूँ, तीसरे ही पारा है, 30वें तक पहुँचते पहुँचते इस बात को याद रखिएगा। नया इल्म बड़ा कड़क होता है। आप नया कपड़ा पहनते हैं ना, कड़ कड़ करता है, कट कट की आवाज़ें आती हैं, अकड़ा हुआ, कल्फ लगा हुआ। और वो कपड़ा जो बहुत साल पहन लिया, रातों को पहनते हैं, धोते हैं, वो नरम हो जाता है। जिसको थोड़ा ही मिलता है ना नया नया, वो अकड़ना शुरू हो जाता है, उसकी अकड़ ही नहीं खत्म होती, है ना। और जो नए इल्म के बाद पुराने हंट जाते हैं ना, जितना दीन में कोई आगे होगा ना उतना सॉफ्ट होगा, दूसरों के साथ फेमिलियर होगा, अकोमोडेटिंग होगा, रिलैक्सिंग होगा, दूसरों को भी स्पेस देगा। आज आप और मैं अगर दीन वालों की पहचान देखना चाहें तो जाकर देख लीजिए, किस में मैं है, किस में अना है, कौन दूसरे को स्पेस देता है। या मैं कराम एक दूसरे के लिए जगह खाली कर देते थे। एक मौके पे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह जिस जगह मदफून है उस मस्जिद में कोई दूसरे नमाज के लिए गए तो उन्होंने रफुल जदैन नहीं किया, क्योंकि उस वक़्त उनके कॉल के मुताबिक इमाम अबू हनीफा रफुल जदैन नहीं करते। उन्होंने कहा कि साहिब कब्र के उस फतवे की अजमत में मैंने आज ये काम नहीं किया, आज होते तो मस्जिद में झगड़ा शुरू हो चुका होता। तो बात यह है, अपने अंदर आजिज़ी लाइए। और इल्म वाला कौन है? इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, जिसके दिल में खशियत है, जो दूसरे को देख के खुश हो, मैं भी कुछ फ़ायदा ले लूँ, मुझे भी तो कुछ चाहिए। आप देखिए, डॉक्टर्स हर साल रिफ्रेशिंग कोर्स कराए जाते हैं। अब कोरोना बीमारी आज से 10 साल पहले डॉक्टरी पढ़े हुए को तो नहीं पता थी। हर कुछ सालों में इल्म रिफ्रेश होता है हर फील्ड ऑफ लाइफ का। आज हम दीन के नाम पे आगे रिफ्रेशिंग नहीं चाहते, और ख़ास तौर पर जब हम पढ़ाने लग जाते हैं। मैं अपने ऊपर लेती हूँ, मैं आपको पढ़ाती हूँ। आप मुझे बताइए, मेरे इन पढ़ाने के बाद के औकात में शहर में कहीं भी कोई पढ़ाता है, मैं उससे पढ़ने को तैयार हूँ। मुझे ले चलिए, मैं जाने को तैयार हूँ। मैं अपने शागिर्दों से भी सीखने को तैयार हूँ, मैं सारा दिन सीखती हूँ। मैंने कुछ पढ़ लिया तो मुझे सब आ गया? नहीं। याद रखिए, ऐसे बंदे का नटशेल में बंद एक छोटा सा हल्का होता है, उसके अंदर वुसअत कल्बी नहीं होती। आयमे कराम में वुसअत थी, इस पहली आयत पे आपको ये थीम इस पूरे पारे में देखेगा, वुसअत कल्बी, दिल खोलो। क्यों कोलू के बैल बने हो? क्यों तुमने छोटी सी चीज़ को दीन समझ लिया है? तो लिहाजा वो चीज़ जो उन्होंने मेहनतों से हासिल की थी, तुम नस्बतों से हासिल करना चाहते हो। और आप देखिए, जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं ना, वो बहुत हटो बचो वाले होते हैं। कभी कभी मुझे बड़ी उलझन आती है, यहाँ तो बहुत ही नया तारुफ है ना पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पर जब पंजाब में अभी पिछले 3-4 साल के सेशंस हुए ना, एक एक लेक्चर में हज़ारों लोग होते हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं जिन्होंने इतने क्राउड को मैनेज करना होता है, तो वो लोगों को पीछे करते हैं। मुझे हमेशा उलझन आती है, मैंने कहती हूँ प्लीज़, मैं खुद कह देती हूँ, देखिए अभी लेक्चर ख़त्म हुआ है, स्टेज पे मत आइएगा, मैं ये सब समेट समाट के, जिसमें मुझे पता है कि बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, मैं आपके पास आऊँगी। कोई नहीं उठता। और वरना कुछ लोग होते हैं, स्टेज पे नहीं आना, आपसे बात नहीं कर, भाई क्या है मेरे पास, आपसे भी छोटी हूँ मैं, आप तो इतनी मेहनत से सुनने आ रहे हैं, मैंने तो सुनाना है, कोई बड़ी बात नहीं। तो हमेशा इंसान दोस्त बने। और जो दूसरे लोग सख्ती करने लग जाते हैं, लोगों को बुरे लगते हैं। अब उन बेचारों की मजबूरी, हरम में अगर दरवाज़ों पे ना खड़े हों लोग, तो लोग हरम को फुल भी कर दें फिर भी अंदर जाते रहे। तो कुछ चीज़ें मैनेजमेंट के लिए करनी पड़ती हैं, अदरवाइज इल्म वाले के पास कोई अकड़ नहीं होती, उसके पास कोई नहीं कि वो कोई अछूत चीज़ है, कोई उससे सलाम नहीं कर सकता, वो हाथ नहीं ले सकता। तो इस बारे में आपको ये चीज़ दिखेगी कि लोग बस दफ़ा उन्हीं चीज़ों में झगड़ने लग जाते हैं जिस चीज़ों में शुरू के लोगों ने कोई ऐसी बात नहीं की होती। फिर अगर आप इस आयत में से रदी अल्लाह अनहु बनने वाले रवैये देखें, तो राह हिदायत की पैरवी करना आज नियत कीजिए। जो बात सबक में आएगी मैं उस पर अमल करूँगी इंशाल्लाह। और दूसरी बात जो आपको इसमें मिलेगी, इख्तलाफ राय होने के बावजूद आपस के तफरकों में ना पड़िए। देखिए, इख्तलाफ और चीज़ है, मुखालफत और है। इख्तलाफ हकीकत है, गुलाब का फूल मोतिये के फूल से मुख्तलिफ है, आम सेब से मुख्तलिफ है, दैट्स ट्रू। मुख्तलिफ इल्म वाले मुख्तलिफ होंगे, अल्लाह ने हर एक को अलग खूबी दी है, लेकिन मुखालफत नहीं करनी। चले शारे फैसल से आए ना आप, कुछ गाड़ियाँ एयरपोर्ट से सदर की तरफ आ रही हैं तो कुछ सदर से एयरपोर्ट की तरफ जाती हैं, रुख ऐसे ही है ना। ये क्या है इख्तलाफ, उनकी मंजिल इधर, इनकी मंजिल। अब मेरे हाथ को देखिए ना, हर एक अपनी लेन में आ रहा जा रहा है, ये है इख्तलाफ, मुखालफत नहीं है। मुखालफत क्या है? कुलीजन, इधर की गाड़ी इधर से टकराए, इधर से इधर टकराए। जो काम आपने नहीं करना वो ये नहीं करना कि तफरकों में नहीं पड़ना। आगे देखिए, रुकू नंबर 2 आयत 254 से 257, टॉपिक है मजबूत सहारा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, बल्कि यहाँ मैं आपको एक छोटा सा पॉइंटर ले दूँ, 254 आयत से अब 286 सूरत के एंड तक मनी मैटर्स की बातें होने लगी हैं। बीच में अल्लाह ताला की बड़ाई की कुछ बातें आएंगी। ईमान वालों, जो हमने तुम्हें दे रखा है इसमें से खर्च करते रहो इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें ना तिजारत है ना दोस्ती ना शिफात और काफिर ही जालिम है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा। मनी की बातें आईं, पैसे देने की बातें आईं तो दिल पे बोझ पड़ता है, मैं क्यों दूँ? तो अल्लाह कहते आओ मैं तुम्हें बताऊँ तुम्हें किसके नाम पर देना है। उस ज़ात के नाम पर कि जिसके हाथ में सब कुछ है। मुराद ये है कि अल्लाह ताला के पास सब कुछ है, उसे तुम्हारे किसी माल की किसी दौलत की कोई ज़रूरत नहीं है। असल बात यह है कि अगर वो तुम्हें अपने रास्ते में खर्च करने की दावत देता है तो वो तुम्हें इज्जत देता है। जो पहाड़ों की तहों में सोना चांदी छुपा सकता है उसको तुम्हारे 2-3 तोले के सेट की ज़रूरत है? जिसने आसमानों से पानी की तरह रिस्क बरसा दिया है क्या उसको तुम्हारे रिस्क की ज़रूरत है? नहीं है। तो पहचानो ये आयतुल कुर्सी, जो इस सूरत की एक बड़ी खूबसूरत आयत है, ज़रा सुनिएगा। अल्लाह ही माबूद बरहक है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो जिंदा है सब का थामने वाला है, जिसे ना ऊँग आती है ना नींद, इसकी मलकियत में ज़मीन व आसमान की तमाम चीज़ें हैं। मंजल्लज़ी युक्रिदुल्लाह, पीछे था यहाँ क्या है, मंजल्लज़ी यशफ़ो इंदहू, कौन है जो इसकी इजाज़त के बगैर इसके सामने शिफात कर सके। वो जानता है जो इनके सामने है और जो इनके पीछे है, वो इसके इल्म में है, वो इसके इल्म में से किसी चीज़ का अहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहे। इसकी कुर्सी की वसत ने आसमान और ज़मीन को घेर रखा है और वो अल्लाह इनकी हिफाजत से न थकता है न उकताता है। वो तो बहुत बुलंद और बहुत बड़ा है, इतनी बड़ी कायनात की हिफाजत उसको नहीं थकाती। हम बड़ा घर बना लें ना, हिफाजत नहीं कर पाते। कुछ साल है ऊपर चले जाइए, बाद में आपसे ऊपर जा ही नहीं जाना। अब सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती, अब बेसमेंट में कौन जाकर देखे। अल्लाह के लिए ना घर बनाना मुश्किल ना उसको चलाना मुश्किल, और इतने बड़े रब की तरफ बुलाने में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना करो, क्योंकि किला इकरा खफित दीन, दीन के बारे में कोई ज़बरदस्ती नहीं। यानी जितना बड़ा है ना तो ज़बरदस्ती लोगों को झुका ले, लेकिन लोगों को वो नहीं झुकाता क्योंकि उसको कोई परवाह नहीं। सारे जन्नत में चले जाएँ सारे जहन्नुम में आ जाएँ, इसलिए कि सीधी राह टेढ़ी राह से मुमताज़ और रोशन हो चुकी है। इसलिए जो शख्स अल्लाह ताला के सिवा दूसरे माबूदों का इनकार करके अल्लाह ताला पर ईमान लाए, इसने मजबूत कड़े को थाम लिया जो कभी ना टूटेगा, और अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। अल्लाहु वलीयुल्लज़ीना आमनु, अल्लाह ताला ईमान लाने वालों का कारसाज खुद है, वो इन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल ले जाता है। और काफिरों के औलिया शयातीन हैं, वो इन्हें रोशनी से निकाल कर अंधेरों की तरफ ले जाते हैं। ये लोग जहन्नमी हैं जो हमेशा इसमें पड़े रहेंगे। अल्लाहु अकबर। ये खूबसूरत सी आयात जिसमें आयतुल कुर्सी भी आई और माल की बात है। आयतुल कुर्सी पे एक हदीस है सही मुस्लिम में 1885, अबू मंजर से ये रिवायत है। आपने फरमाया कि अल्लाह की किताब में तुम्हारे पास कौन सी आयत सबसे बड़ी है? इन्होंने कहा अल्लाह और उसका रसूल जानता। आजजी थी वरना तो पता था। आपने फरमाया अबू मंजर, अल्लाह की आयत में कौन सी आयत सबसे बड़ी है? दोबारा पूछा तो कहने लगे अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा, यानी आयतुल कुर्सी। तो आपने उनके हाथ मारा शाबाश देते हुए, कहते कि मेरे सीने पे ऐसे हाथ मारा जैसे थपथपाते हैं, और फरमाया अबू मंजर तुम्हें तुम्हारा इल्म मुबारक हो। तो ये आयतुल कुर्सी 30वें पारे की 3 सूरतों से बड़ी एक आयत, 10 जुमले, 25 यानी 25 नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स एक एक आयत में अगर आप जमा करें ना तो आपको इसमें से देखिए ज़रा कितनी सिफात अल्लाह की दिखती हैं। मसलन अल्लाह माबूद बरहक है, अल हय्युल क़य्यूम है, ज़मीन व आसमान का मालिक है, ज़िंदा और जावेद हस्ती है, हमेशा से है हमेशा रहेगा, हर शय का वजूद उसके हुक्म से कायम है, अल्लाह आहद है, अल्लाह समद है, अल्लाह बड़ी शान वाला है। और जो अबू मुनज़र को अल्लाह के नबी ने खुशखबरी दी थी इससे पता चलता है कि सहाबा का इल्म रासिख था, पुख्ता इल्म था, सहाबा करम पुख्ता इल्म रखते थे। और इसी आयत पे हज़रत अबू हुरैरा का एक वाक़या आपने तफसीर में पढ़ा होगा कि माल गनीमत पे मुकर्रर किए गए थे हिफाजत के लिए, और 3 रातों तक कोई आता रहा और उसमें से कुछ चोरी करने की कोशिश करता, और आखिरी रात में आयतुल कुर्सी सिखा कर गया, और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो शैतान था, है झूठा, बात सच्ची करके गया। आपने फरमाया कि जिस माल पे आयतुल कुर्सी को तुम पढ़ लेते हो, शैतान उसमें से हिस्सा नहीं ले सकता। इससे क्या पता चला कि सहाबा कराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को सच मानते थे, क्योंकि उनकी तौहीद पुख्ता थी। फिर आयत 256 में ला इकराह फिद दीन की बात है। इससे ज़रा सी गौर से बात समझ लीजिए, किसी को भी ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं किया, ना सहाबा ने, ना नबी ने, ना बाद में फतूहात के सिलसिले में। आज आप मैं अपने बच्चों को ज़बरदस्ती इस्लाम पे नहीं ला सकते। हमने बड़ी मेहनत करके उनको इस्लाम से दूर किया, हमने चुन चुन के उनको उन स्कूलों में डाला जहाँ उनका स्टैंडर्ड तो बहुत अच्छा हो जाए लेकिन उनके अकायद मशकूक हो जाए। प्यार और मोहब्बत से बुलाइए, ज़बरदस्ती नहीं है। उनके दिल के अंदर वो फितरत की जोत जगा दें जो फितरत की सूरत में अल्लाह ने हर इंसान में रखी हुई है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बा लिल्लाह की बात कीजिए, अपने बच्चों को अल्लाह की मोहब्बत दे दें, कुरान से जोड़ दें, कुरान उनको सब सिखा देगा। सहाबा कराम के दिल अल्लाह की मोहब्बत से मुनव्वर थे, इसीलिए फिर वो कभी किसी तागूत के आगे नहीं झुके, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला की तलवार से सारे तागूतों को काटो, फिर मरते दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह होगा। वला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून। और इस पारे का थीम लीजिए, गैर तस्लीम शुदा हकीकत पे माल लगाया, इसलिए कि अल्लाह ताला ही उनकी सबसे पहली और आखिरी तरजीह था, अल्लाह ताला उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी था। अगर आप इसमें से वो रवैये ढूंढिए जिससे अल्लाह की रज़ा मिलती है, तो ईमान लाने के बाद मजबूती से इस कड़े को थाम लीजिए। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुमस्तकामू, और पुख्ता ईमान लाइए और तागूत का इनकार कर दीजिए। इसके बरक्स दुनिया में सब कुछ है जो बातिल है। आप देखिए कि अल्लाह सुबहाना ताला ने आयत 254 से खर्च की बात की है। सूरत बकरा में हम इकसामे बिर पढ़ रहे हैं इस वक्त, आयत 177 से ये सिलसिला शुरू हुआ है ना, जिसमें डिफरेंट चीज़ों से पढ़ते हुए। अब इस बारे में आपको इन्फाक फी सबीलिल्लाह की बहुत बात मिलेगी। तो इस आयत से बुनियादी तौर पे ये बात शुरू हुई, बीच में आयतुल कुर्सी इसलिए आई कि ये ना सोचना कि अल्लाह को तुम्हारे माल की ज़रूरत है। एक जुमला लिख ले, जिसने रब को पा लिया, जिसने रब की शान को पा लिया, उसका माल बाकी नहीं रहता। तू बचा बचा के ना रख वाली कैफियत सिर्फ उसकी होती है जो बचाता है, जिसने भी रब को नहीं पाया। दुनिया में आपको मैं मिसाल से समझा दूं, क्योंकि आयतुल कुर्सी बेस्ट टाइम है जिसमें आपको मुझे समझ आ जाएगा कि किसी पे खर्च करने की क्या कैफियत है। आप किस पे खर्च करते हैं? नंबर एक, जिसे आप मोहब्बत करते हैं, उसकी मिसाल बीवी और शौहर, बच्चे। शौहर कितना कमाते हैं? और आप हैरान होंगे कि शौहर अपनी कमाइयों का 90% बीवी, बच्चों और घर वालों पे लगा देते हैं। अपनी जात पे क्या है? चंद जोड़े, दो वक्त की रोटी। मोहब्बत वाले पे खर्च करते हैं, नंबर एक। दूसरा, इंसान उस पे खर्च करता है जिससे मरूब होता है। बिलफर्ज़ आपको खबर मिले कि आज आपके घर में इस इलाके के मेयर आएंगे, जो भी हो, कोई बड़ा बंदा आपके घर आने वाला हो, आपका क्या दिल चाहेगा? कुछ बचाएंगे, बल्कि कुछ उधार पकड़ लेंगे, कोई इधर उधर से अच्छा सा डिनर सेट मंगा लेंगे, कमरे का ड्राइंग रूम बंद कर देंगे कि रहने दो, सोफा खराब हो जाएगा, वाइट पर्दे हैं, वाइट कुशन है, आप तो वो कुछ भी रखेंगे जो नहीं है। और अगर मैं आपको मिसाल दूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके घर आ जाएं, इफ प्रॉफिट विजिट्स यू, तो आप कुछ बचाएंगे? कभी भी नहीं बचाएंगे। और अगर मिसाल दीजिए, आपको कोई ऐसा मेहमान भेज दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे आपको बड़ी मोहब्बत थी, तो आप क्या अपने घर का कोई कोना बचाएंगे? अल्लाह के नबी का भेजा हुआ मेहमान कुरान, रमज़ान, 30 दिन के लिए आपके घर में आ गया, हमारा तो दिल करेगा ये रमज़ान कभी जाए ही ना। और अगर खुद अल्लाह ताला आपके घर में आना चाहें, बस समझ आ गई ये बात, जिसके दिल में अल्लाह का मुकाम होगा वो अपने आप को कभी नहीं बचाता। अल्लाह के रास्ते में किसी गरीब के हाथ में नहीं आप देते, अल्लाह के हाथ में जाता है। हज़रत आयशा सिद्दीका जब कोई दिरहम देती तो उसको खुशबू लगाती, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा था वो उस गरीब के हाथ पे पड़ने से पहले अल्लाह के हाथ में पड़ता है। ये सहाबा कराम और हज़रत उस्मान गनी ने जो दिया ना, वो अल्लाह को देते थे, इसलिए दिल खोल के देते थे। देखिए ना, कोई गरीब रिश्तेदार आ जाए, बेचारा कमज़ोर, आपकी मासी, हर एक का स्टैंडर्ड होता है ना, कोई थोड़ी पे भी राज़ी हो जाएगा। मैं आपको मिसाल दे रही हूँ सिर्फ अल्लाह के मुकाम को पहचानने के लिए। आप अपने किसी बहुत अजीज़ को देंगे ना, तो उसके हैसियत का महंगा कपड़ा देंगे। अब महंगे कपड़े अक्सर प्योर होते हैं। आपकी मासी काम करती है, मेड सफाई करती है, क्या आप उसको प्योर रेशम का सूट लेके दे सकते हैं? वो तो 2 दिन में खराब कर देगी। एक दफा बेचारी पहनेगी, पसीना आएगा, अगले दिन जाके धोएगी, तार तार हो जाएगा, कहेगी बाजी आपने मुझे बड़ा बेकार कपड़ा दिया। आप उसको मोटा लेके देंगे, इस्तेमाल में अच्छा होगा, अब वो सस्ता होगा, तो उस मासी की जरूरत ही एक सस्ता जोड़ा था तो वो उस पर राजी है। अब अल्लाह की ज़ात पे आइए, अल्लाह सुबहान तआला को मेरे आपके माल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये जो अजमत सहाबा पढ़ी और अजमत उस्मान गनी आज पढ़ने लगे हैं ना, तो उन्होंने चूंकि अल्लाह की हस्ती को पहचान लिया था, नबी सल्लम के मुकाम को पहचान लिया था, इसलिए उनको देना मुश्किल नहीं लगा। उनको तो समझ नहीं आता था कि हम दें क्या, हम करें क्या। वो अपनी मसलियतों को कुर्बान करके दीन की तरफ बढ़े, उन्होंने संजीदगी के साथ दीन को अपनाया था। और ये जो सदका का लफ्ज़ है ना, सदुका से है, सच। आई एम सीरियस। आप अमेरिका की मिसाल देती हो कि आप $2,000 का सोफ़ा ख़रीद लेते हैं क्योंकि आपको पता है कि सोफे की वर्थ है $2,000। आप $20,000 की गाड़ी खरीद लेते हैं क्योंकि आपको पता है इसकी वर्थ है 20,000। और आप ब्रेड खरीदते हैं तो $2 की खरीदते हैं। जिस चीज़ की आपको वर्थ पता होती है आप उस पर खुशी से लगाते हैं। जिसको दीन की वर्थ पता है, जिसको इस्लाम की वर्थ पता है, फिर वो इस बारे में कंजूसी नहीं कर सकता। बस यही बात समझ लीजिए, जिसको ये बात समझ आ गई उसने तो 9 दफ़ा 100 100 ऊंट सामान से लदे हुए देकर अल्लाह के नबी की ज़ुबान मुबारक से 9 दफ़ा कहलवा लिया, उस्मान फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना। उन्होंने कुआं खरीद के ₹20,000 में सौदा अपने लिए फ़ायदे का कर लिया, और उन्होंने वो बाग रास्तों में अल्लाह के दे के आज तक हरम की तौसी में अपना हिस्सा डाल दिया। अल्लाह से ये दुआ करें। मैंने सोचा था आज के पारे के साथ ये दुआ कराऊंगी कि अल्लाह अगर तूने दौलत हमें उस्मान जैसी दी है ना, गनी रज़ी अल्लाह अन्हो, तो अल्लाह हमें दिल भी उस्मान गनी का दे। हमारे एक ब्रदर हैं, वो ये दुआ करते हैं और बड़ी अच्छी लगती है उनके मुँह से कि अल्लाह अगर दौलत दे तो दिल भी उस्मान जैसा दे, सांप ना बन के बैठ जाए। वही $1,000 वाली ज़ादुल खैर की मिसाल ले आए कि अपने ऊपर ही ना लगाते रहे बल्कि दूसरों पे लगा दें। और अब इसी बात को समझाने के लिए आगे कुछ वाक़यात हैं। रुकू नंबर 3 देखिए, इत्मीनान कल्ब, दिली इत्मीनान, आयत 258 से 260। अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं, अलम तारा, क्या तूने नहीं देखा उस शख्स को जो सल्तनत पाकर इब्राहिम से इसके रब के बारे में झगड़ रहा था? जब इब्राहिम ने कहा कि मेरा रब तो वो है जो जिंदा भी करता है और मारता भी है, वो कहने लगा मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। नमरूद का किस्सा है, नोट कर लीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला सूरज को मशरिक की तरफ ले आता है, तू इसे मगरिब की तरफ से ले आ। अब तो वो काफिर हैरान रह गया, फबूहित अल्लाजी कफर, मबहूत हो गया। और अल्लाह ताला जालिमों को हिदायत नहीं देता? या इस शख्स की माने जिसका गुजर इस बस्ती पर हुआ जो छत के बल ऊंधी पड़ी हुई थी, वो कहने लगा इसकी मौत के बाद अल्लाह ताला इसे किस तरह जिंदा करेगा? तो अल्लाह ताला ने इसे मार दिया 100 साल के लिए, फिर इसे उठाया, पूछा कितनी मुद्दत तुम पर गुजरी? कहने लगा एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। फरमाया बल्कि तू 100 साल तक रहा, फिर अब तू अपने खाने पीने को देख के बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, और अपने गधे को भी देख, हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बनाते हैं, तू देख के हम अड़ियों को किस तरह उठाते हैं, फिर इन पर गोश्त चढ़ाते हैं। जब ये सब जाहिर हो चुका तो कहने लगा मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। और एक और वाक़या, और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा है मेरे परवरदिगार तू मुझे दिखा तू मुर्दों को किस तरह ज़िंदा करेगा, जनाबे बारी ताला ने फरमाया क्या तुम्हें ईमान नहीं? जवाब दिया ईमान तो है लेकिन मेरे दिल की तस्कीन हो जाए। फरमाया 4 परिंदे लो, इनके टुकड़े टुकड़े कर डालो, फिर हर पहाड़ पर इनका एक एक टुकड़ा रख दो, फिर इन्हें पुकारो, तुम्हारे पास दौड़ते हुए चले आएंगे, और जान रखो कि अल्लाह ताला गालिब है और हिकमतों वाला है। ये 2-3 वाक़यात जो हमने पढ़े हैं ना, ये तागूत की हकीकत को जानने के लिए थे। पीछे चूँकि तौहीद की बात हुई, अल्लाह के एक होने की बात हुई, तो याद रखिए कि हर दौर में मुख्तलिफ लोगों को गलती लगी, और वो क्या कि हम खुदा हैं। इसमें एक तो फिरौन था, अन रब्बुकुम अलअ कहता था खुद को। यहाँ जो वाक़या हमने पढ़ा ये नमरूद का था, खुद को सूरज देवता का मजहर यानी अवतार कहलाता था। उस दौर के बादशाहों ने लोगों के दिलों में ये डाला हुआ था कि हम खुदा के भेजे हुए नुमाइंदे हैं, जब तक तुम हमारे आगे नहीं झुकोगे तुमसे रब भी राजी नहीं होगा। तो ऐसे शख्स को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कैसे खूबसूरत जवाब दिए, इंटेलेक्चुअल वैसे की अंबिया कराम का तरीका दावत भी हमें इन चीज़ों से पता चलता है, और आज मुसलमानों को ऐसी इंटेलेक्चुअल तबलीग की ज़रूरत है। माजरत के साथ, आज अगर हम आने वाली नस्लों को दीन सिखाना चाहते हैं तो दी बेस्ट ऑडियंस टारगेटेड वो बच्चे हैं जो वेस्ट में पल रहे हैं। मैंने पिछले 20-22 साल में जो बाहर की दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ देखी है वो वहाँ की मुस्लिम यूथ का कॉन्फिडेंस देखा है। उनको अपने दीन पे इतना यकीन है जैसा किसी और पे क्या होगा। हमारे मुल्क में मैं खुद भी जब तक इधर थी, मैं माजरत से कहूँगी कि मेरी भी सोच कभी ना इतनी खुलती, मेरे अंदर भी इतनी डाइवर्सिटी ना आती, इतना मुझे डिफरेंट एंगल से बात करना ना आता अगर मैंने बाहर की दुनिया का घाट घाट का पानी ना पिया होता। मैंने बाहर जाकर जो देखा है और मेरे अपने घर में इसकी मिसाल मौजूद है, यकीन नहीं आएगा किसी को कि ये इंसान बाहर की दुनिया में पला बड़ा है। लेकिन जो बात बताना चाहती हूँ वो ये कि हम यहाँ किसी ना किसी शेड के अंदर के मुसलमान होते हैं। हमारे यहाँ के बच्चे भी बेचारे घुटे हुए हैं, बाहर जितने रिवॉर्ड्स हैं नाम बेशुमार हैं, आप मुझसे ले लीजिए, किसी और से ले लें, इंग्लिश स्पीकर, खुली दावत। मैंने वहाँ जाकर जब फिर कुरान को पढ़ा तो मुझे ऐसे लगा कि सन ग्लासेस उतार दिए जो ब्राउन कलर के थे, किसी ने ग्रीन कलर के पहने होते, किसी ने ब्लू के, आप सारे ग्लासेस उतार के इस कुरान को पढ़े हैं जैसे इस वक्त आपके सामने रखा जा रहा है, आप एक प्योर मुसलमान हैं। और मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ और बेटियों वालों को कहती हूँ कि बाहर की दुनिया से अगर कभी रिश्ता आया ना आपकी बेटी का, तो अगर वो बच्चा मशहूर है ना कि बच्चा दीनदार है वहाँ का, तो फ़ौरन कर देना, वो आपके इधर के मुल्कों के दीनदारों से ज़्यादा खुले दिल का होगा इंशाल्लाह। और अगर वो कहते नहीं बस ऐसा ही है जैसे यहाँ के बच्चे होते हैं, तो तुम सोच भी नहीं सकती वो बच्चा कितना बिगड़ा होगा। दीनदार, बहुत दीनदार, प्योर, साफ सुथरे, तासुब से पाक, मसलक से पाक, फिकों से पाक, और कुरान सुन्नत के आईने में साहबा उनके रोल मॉडल हैं। और अगर बेदीनी है तो फिर अल्लाह रहम करे, उसकी भी कोई हद नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप इस वक्त अगर समझ रहे हैं ना कि अल्लाह ताला ने आपको मुझे इस सारे तासुबात से निकाला, आज हमारी सोच खुटी हुई है। अल्लाह ताला ने ये दो चार वाक़यात बताकर आपको मुझे हज़रत इब्राहिम और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम इन सब के किस्से इसलिए बता दिए कि तुम भी तो अपने ताग़ूत हटाओ, सोच खुली करो, वुसअत क़ल्बी का इज़हार करो। अपने आप को एक छोटे से कुएं का मेंढक क्यों बनाते हो? जिस तरह लोग कहते हैं जी कुआं प्यासे के पास नहीं आता, प्यासा कुएं के पास आता है। मैं कहती हूँ आप कुआं क्यों बनते हैं, आप बादल क्यों नहीं बनते? बादल आपके घर में आता है पानी देने। तो ये सारे तागूत थे जिनके साथ मुख्तलिफ अदवार में अम्बिया कराम को मौका मिला, और ये जो इंटेलेक्चुअल बातें की हैं ना हज़रत इब्राहिम ने, उससे आज का यंग बच्चा करता है। आप ज़रा कुछ चैनल्स तो देखिए, मैं कई नाम आपको दे सकती हूँ कि जितने खूबसूरत तरीके से आज हमारे यंग बच्चे वेस्ट में इस्लाम का काम करें। कि किसी ने कहा कि कुर्बे की आमद अगर सूरज मगरिब से निकलना है ना, तो इस्लाम का सूरज भी मगरिब से निकलना है। आज भी इस्लाम इज़ द वास्टली स्प्रेडिंग रिलीजन इन UK। फिगर्स एंड फैक्ट्स हैं, आज 2023 है, मेरा ख्याल है 5-6 साल रह गए हैं, उनके फिगर्स बता रहे हैं, गोरों के फिगर्स, बरतानिया के फिगर्स बता रहे हैं कि आज से 5-7 साल बाद पूरे वेस्ट में सबसे ज़्यादा तादाद मुसलमानों की होगी। उन्होंने अपने चर्च बेचने छोड़ दिए हैं। आप जाइए UK में, हर दूसरा तीसरा चर्च इस वक्त मस्जिद है। उन्होंने संडेज़ को खोलना था और आके गॉड को राज़ी करना था, उनकी नस्ल ने वो भी छोड़ दिया, उनके खर्चे नहीं चले, चर्च बंद हो गए। मुसलमानों की नज़र हर चर्च पर जो बिक रहा है, अब उनके चर्च मस्जिदें बनी पड़ी हैं। और अगर हमारी मस्जिदों का जो आज हाल है, अल्लाह रहम करे, अगर यही रहा तो अगली आधी सदी के बाद ये भी बिकनी शुरू हो जाएंगी। हमारे बच्चों का आज मस्जिद में दिल क्यों नहीं लगता? हमने उनको अल्लाह से नहीं जोड़ा। इसलिए ये वाक़यात जो अल्लाह ताला की मोहब्बत के हम कुरान में पढ़ते हैं, और ख़ास तौर पर सहाबा कराम के जो वाक़यात हैं ना, इसके साथ उनको जोड़ें, तो इसमें से हमें जो रवैये दिख रहे हैं इस रुकू में कि दावत हक के दलाइल देना सीखे। कॉन्फिडेंट मुस्लिम बनिए। वी आर एम्बेरेस्ड टू मुस्लिम, आई एम सॉरी टू बी मुस्लिम। नहीं, अपने बच्चों को सॉरी से निकालिए, अपने बच्चों को फ़ख्र दीजिए, इस्लाम का फ़ख्र दीजिए। और दूसरा रवैया क्या है, पुख्ता ईमान पर दिली इत्मीनान होता है। आपका दिल आपको बताता है कि आप हक पे हैं कि नहीं, और हक की तो पहचान जो है किसके बाद बंदा झुका नहीं रखता, वो कभी दब के नहीं रहता।